پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین کے اوپر وہ چلتے ہیں، تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر چال میں تکبر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خامہ خواہ جھک جھک کر چلتے ہیں، خامہ خواہ وہ اپنے کمر کے اندر خم لے آتے ہیں، خامہ خواہ وہ اپنے ہاتھ میں ایسا لے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ خامہ خواہ اپنی عزت نفس کے اوپر وہ کمپرومائز کریں، وہ کہیں کہ بھئی ہم تو رحمان کے بندے ہیں تو ہماری چال میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ نے یہ نتیجہ کیوں نکالا کہ یہ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز کر لیں؟ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی عزت نفس کو ختم کر دیتے ہیں. جی نہیں، نہ ان میں تکبر ہوتا ہے نہ یہ ذلت کو قبول کرتے ہیں. یہ وہ ہے کہ دوسروں کو محترم سمجھتے ہوئے اپنی عزت نفس اور سیلف اسٹیم کا خیال رکھتے ہیں. ایک بیلنس ہے کہ جو پروردگار عالم نے مانگا ہے. تکبر نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا عزت نفس بھی نہیں ہونی چاہیے؟ جس کو اقبال نے خودی سے تعبیر کیا کہ انسان کی جو اپنی ایک سیلف اسٹیم ہے، کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے برادران عزیز، بعض جگہوں پر معصوم نے اس کو کس طریقے سے ایلوبریٹ کیا. نہج البلاغہ ایک عجیب خزانہ ہے. مولا کائنات وہاں فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے. سنیے، تکبر سیلف اسٹیم وہ بیلنس جس کی ہمیں تلاش ہے. سنیے اس جملے میں، سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے کہ پیسے والے، دولت مند، سیٹ صاحبان اللہ کی خاطر غریبوں سے جھک کر ملے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں پر ایروگنس ہی کا خطرہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا، وہاں پر خطرہ ہی اس بات کا ہے کہ وہ غرور کا شکار ہو جائے گا. لہذا مولا فرماتے ہیں وہ کتنا اچھا ہے. الفاظ میرے ہیں، مطلب مولا کا، وہ کتنا اچھا ہے. کلمات قصار میں دیکھیے گا، آپ کو ملے گا. مولا کہہ رہے کتنا اچھا ہے پیسے والے، سیٹ صاحبان، جاگیردار، چودھری صاحبان، سیٹ صاحبان، مالدار، مال والے، یہ اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کو پیش نظر رکھے اور پھر اللہ کی خاطر دولت ہونے کے باوجود جو غربا ہیں ان سے جھک کر ملے، ان کے سارے کے ساتھ ملے، کتنا اچھا ہے. اب جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں مگر اس سے زیادہ اچھا ہے کہ جو غریب ہے وہ اپنی غربت کے باوجود پیسے والوں سے تکبر سے ملے. شاید آپ کو جھٹکا لگا ہو، یہ کیا جملہ آ گیا؟ مگر تکبر کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، سوچتے سمجھتے ہوئے استعمال کیا ہے. یہاں پر تکبر سے وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تکبر سے وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر تکبر سے مراد ہے کہ وہ اپنی سیلف اسٹیم کا خیال رکھے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھے. اچھا یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ وہ پیسے والے کے کیس کے اندر کہ یہ جو مالدار ہے وہ اللہ کی خاطر ان غربا سے جھک کر ملے. ان غربا کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر یہ کہ یہ غربا اللہ کی خاطر ان پیسے والوں سے تمکنت کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ غرور سے ملے. کیوں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پیسے والے کے کیس میں خطرہ اسی بات کا ہے کہ وہ غرور کا شکار ہو جائے گا، لہذا اس سے کہا جا رہا ہے جھک کر ملو. اس کا کیس یہ ہے کہ یہ اپنی غربت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کروانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لہذا اس سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار اپنی عزت نفس کو خراب مت کرو. تمہاری عزت نفس بہت قیمتی ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے. پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ تم خامہ کا ذلیل ہو جاؤ. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ انسان خامہ خواہ کسی سے بدتمیزی کرے. اگر کوئی صاحب ثروت ہے اور اس نے واقعاً سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ احسان فراموش ہو جائے، مگر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک عزت نفس ہے کہ جس کا تمہیں بہرحال خیال رکھنا پڑے گا، اور اگر نہیں رکھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنی انسانیت کو ذلیل کر دیا، تم نے اپنے آپ کو ذلت کے حوالے کر دیا، توقع ذلت تمہاری گردن میں آ گیا. یہ قابل قبول نہیں ہے. غور فرمائیے گا برادران عزیز، یہ وہ منزل ہے کہ اگرچہ میرے ایجنڈے میں قطن نہیں تھا، مگر یہاں بہت مناسب ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کروں تو چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا. یہ جو عزت نفس کا احساس کہ سیلف اسٹیم، اس کو پروٹیکٹڈ رکھو، اس بیلنس کو ہاتھ سے مت جانے دو. چھٹے امام کے زمانے میں کسی نے چھٹے امام سے غربت کا شکوہ کیا. اچھا برادران عزیز، اس میں کیا 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 مشکل کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ بھائی آپ اپنے کسی بڑے کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے کہ بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مشکل ہے، مسائل ہے، پرابلم ہے، اور وہ بڑا جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کر دے گا. وہ بڑا کبھی تعلق کی وجہ سے بڑا ہوگا، کبھی رشتے کی وجہ سے بڑا ہوگا، کبھی عزت اور احترام کی وجہ سے بڑا ہوگا. یہی ہوتا ہے، औलाद है वो माँ बाप के पास गए कि भाई हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मुश्किल है। दादा के पास गए, दादी के पास गए, नाना के पास गए, नानी के पास गए, आप पेश इमाम के पास गए, किसी आलिम के पास गए, किसी बुजुर्ग के पास गए, उस्ताद के पास गए, सफेद बालों को देखा तो आपने कहा कि आप बुजुर्ग हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ये तो बड़ा एक कॉमन ट्रेंड है, ये तो बड़ा एक कॉमन ट्रेंड है। तो इमाम से बढ़कर कौन बड़ा हो सकता है? वो आया और छठे इमाम के पास, चाहने वाला है, शिया है, उसने इमाम से कहा कि मौला मुश्किलात हैं, हालात खराब हैं, परेशानियां हैं, तंग दस्ती है, फक्र फाका और इफलास ये सब कुछ है, मौला दुआ फरमाइएगा। तो इमाम क्या कहते हैं कि भाई हमें तो पता चला है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, हमें तो ये पता चला है कि तुम बहुत साहिब सरवत हो, तुम तो मालदार। जरा देखिए कि इन पूरे डायलॉग्स के जरिए से इमाम को कौन सी चीज है कि जो उसके दिल के अंदर बेदार करना चाहते हैं। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो खल्लाश है, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो गरीब है, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो इस वक्त मुफलिस है, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि उसके पास माल नहीं है। वो आया है इमाम के पास और इमाम से कहता है मैं इस वक्त तंगदस्त हूँ, परेशान हूँ, माली एतबार से प्रॉब्लम में हूँ, ये है वो है। और इमाम क्या जवाब दे रहे हैं? इमाम कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पास बड़ी दौलत है, तुम साहिब सरवत हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम फकीर नहीं हो, तुम कल्लाश नहीं हो। वो कहते हैं मौला अच्छा आप इंसाफ से मुझे बताइए, आप अगर जाएं और इमाम ये जुमला कहें तो आप भी सोचने लगेंगे कि कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है कि जो मैं खुद खुलवा कर भूल गया, बेगम के नाम पर खुलवा लिया था, किसी बच्चे के नाम पर खुलवा लिया था, मैं खुलवा के खुद ही भूल गया हूँ और पता चला कि 2-3 करोड़ उसके अंदर रखे हुए थे, याद ही नहीं आ रहा। या फर्ज कीजिए किसी जमीन के अंदर किसी जगह पर गड़ा खोद कर कोई खजाना वजाना छुपाया हुआ था, भूल गए, ऐसा तो नहीं। अच्छा वो अपने जहन पर जोर डालता है, कुड नॉट रिकॉल एनीथिंग। तो उसने कहा कि मौला याद तो नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज याद तो नहीं आ रही, आप फरमा रहे तो आपको तो मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता, कोई और अगर कहे तो हो सकता है कि मैं कहूं कि आपको इश्तबा हुआ है, मगर इमाम को कैसे कहूं? वो कि जो दिलों के हालात को मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं उनसे मैं ये कैसे कह सकता हूं? तो मौला याद तो नहीं आ रहा है कि कौन सी दौलत है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, मगर नहीं। तो इमाम ने कहा कि नहीं भाई, मेरे पास बड़ी पक्की इत्तला है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक न्यूज है कि तुम तो बहुत साहिब सरवत हो, मालदार हो, दौलतमंद हो। मौला कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैंने काफी जहन पर जोर डाला। जब तीसरी दफा भी इमाम ने इसी तरह से इसरार किया तब वो थोड़ा सा रैश हुआ, इरिटेट हुआ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था वो जाहिर हुआ। उसने कहा कि मौला वैसे भी लोग तो हमारा मजाक उड़ाते ही, वो तो कहते रहते बहुत बनते हो अहले बैत के मानने वाले और ये और वो, और फिर देखो तुम्हारे ऊपर गुर्बत है, सारी चीजें हैं, अब आप भी अगर कह रहे हैं तो मौला हम आपको तो कुछ कह भी नहीं सकते, दूसरों से तो फिर भी लड़ सकते हैं, आपको तो कुछ कह भी नहीं सकते। अब उसने कह दिया, इमाम ने कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अब जरा गौर करो, अल्फाज मेरे हैं, मतलब इमाम का। इमाम फरमाते हैं कि ये बताओ, सब छोड़ो, ये बताओ हमसे मोहब्बत करते हो? हमसे मोहब्बत करते हो? उसने कहा कि हाँ मौला बिल्कुल आपसे तो मोहब्बत करता हूँ, इसमें तो कोई शक भी नहीं है, शुबा भी नहीं, मैं अपने दिल के हालात से खूब वाकिफ हूँ, अगर मैं अपने दिल को चीर कर देखूं तो उसमें आपकी मोहब्बत इंतहा तक मुझे नजर आती है। इमाम ने कहा अच्छा अभी एक बात बताओ, ये हमारी जो मोहब्बत है, हमारे मोहम्मद की मोहब्बत कितने में बेचोगे, ये कितने में बेचोगे? वही सवाल सुनता है सटपटा जाता है कि मौला इस सवाल का मतलब क्या है? मैंने सवाल किया है हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, कहा मौला बिल्कुल, कितने में बेचोगे? क्या मतलब? मैं करेंसी तब्दील कर रहा हूं, अगर कोई तुम्हें 10,000 रुपए ऑफर करे तो क्या तुम हमारी मोहब्बत बेचने के लिए तैयार हो जाओ? मौला 10,000 रुपए की हैसियत क्या है? और इंसाफ की बात यह है कि वाकई इतने इन्फ्लेशन के बाद तो क्या हैसियत है 10,000 रुपए की, क्या हैसियत है 10,000 रुपए में मौला आपकी मोहब्बत बेच दूं, ये सौदा मुझे कबूल नहीं है। कहा नहीं हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10,000 ना सही, 1,00,000 में बेचोगे? मौला 1,00,000 रुपए को मैं ठोकर मार दूंगा, आपकी मोहब्बत के मुकाबले में 1,00,000 क्या है? कहा नहीं हम और बढ़ा देते हैं, 1 करोड़ में बेचोगे? 1 करोड़ में हमारी मोहब्बत बेचने के लिए तैयार हो जाओगे? अब तो वाकई करोड़ तो कुछ तो है, नहीं मौला करोड़ भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं 1 करोड़ को लात मार दूंगा मगर आपकी मोहब्बत बेचने के लिए तैयार नहीं हो जाऊंगा। तो 1 अरब में बेचोगे? अगर हमारी मोहब्बत की कोई कीमत 1 अरब लगाए तो क्या उसे बेचने के लिए तैयार हो जाओगे? इमाम ने कहा मौला 1 अरब भी अगर मिलता हो तो मैं आपकी मोहब्बत बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। इमाम कहते हैं कि अब तुम खुद ही बताओ कि कितने में बेचोगे, ये तो हमने तुम्हारे सामने फिगर्स रख दिए, अब तुम बताओ कि कितने में बेचोगे? तो वो कहता है कि मौला अगर ये पूरी कायनात भी मेरे कदमों में रख दी जाए ना तो मैं इसको भी ठोकर मार दूंगा, आपकी मोहब्बत बेचने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। पूरी कायनात अगर लाकर कदमों में ढेर कर दी जाए तब भी मैं आपकी मोहब्बत नहीं बेचूंगा। इमाम फरमाते हैं कि जो इतना ज्यादा मालदार हो वो सब कुछ हो सकता है, गरीब और फकीर नहीं हो सकता। जिसके पास इतनी कीमती दौलत मौजूद है वो अपने आप को गरीब कैसे कह रहा है। अब मैं फिर आपके सामने रखता हूँ सवाल, क्या इमाम कहना चाहते हैं? क्या इमाम ये कहना चाहते हैं कि बस अब ये तुमने सुन लिया और घर जाकर सो जाओ? क्या इमाम ये कहना चाहते हैं तो फिर ये एक बार एक्सट्रीम की तरफ चला? ये नहीं कहा इमाम। इमाम सिर्फ समझाना ये चाहते हैं कि अपनी कदर पहचानो, गुर्बत की वजह से अपने आप को हकीर मत समझो। ये अगर मान लो दौलत तुम्हारे पास ना हो तो अपने आप को हकीर मत समझो। मगर क्या ये समझाना चाह रहे कि इस दौलत हुब्बे अहले बैत की अहमियत और कीमत को समझने के बाद तुम अपना स्टेटस ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको ऊपर करने की कोशिश मत करो? क्या ये कहना चाह रहे? ये नहीं कहना चाह रहे। इमाम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कि अपनी पूरी कोशिश करो और अगर तुम्हें जायज जराए से, हलाल से तुम्हें माल मिल जाए, वुसअत मिल जाए तो मजीद शुक्र अदा करो, मगर अगर ना भी मिले और गुर्बत बाकी भी रहे तो सब कुछ होने देना। हुब्बे अहले बैत की वजह से तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद है कि अपने आप को कभी हकीर मत समझना। आपने गौर फरमाया बरादर ने अजीज, मैं फिर इसरार करता हूँ, एक इंसान है उसकी चाल में तकब्बुर नहीं होना चाहिए, गुरूर ना हो, मुतकब्बिर ना हो, मगर क्या वो अपनी इज्जत नफ्स को कॉम्प्रोमाइज करे? जी नहीं। वो जिल्लत को कबूल करे? जी नहीं। क्यों कहा जा रहा है मालदार से कि झुक कर मिलो? इसलिए कि वहां पर एरोगेंस का इम्कान ज्यादा है। क्यों कहा जा रहा है इस गरीब से कि तुम गुर्बत के बावजूद तमकिनत से अपने वकार के साथ तुम गुफ्तगु करो उस पैसे वाले के साथ? क्यों? बदतमीजी नहीं मगर अपने वकार के साथ क्यों? इसलिए कि यहां पर इम्कान इस बात का ज्यादा है। कैसा ना हो कि ये खामा का हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, खामा का पैरों को हाथ लगा रहा है। क्यों? अगर वो वाकई सखी है तो सर आंखों पर, मगर सिर्फ पैसे वाले होने की वजह से दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ना ये ना कर। अगर उसने अपने अंदर कुछ अखलाकी ट्रेड्स ऐसे पैदा किए कि जिसकी वजह से वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दौलत ना देखो, ये देखो कि दौलत आने के बाद कारून बना है या खदीजा ताहिरा बना है। अगर कारून बना है तो कोई इज्जत और एहतराम नहीं है, और खदीजा अगर बन गया है तो क्या कहना कि परवरदिगार उसकी दौलत को अपनी तरफ मंसूब करता है।